यह प्रवचन श्री वृंदावन धाम में दिया गया परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिन कार्तिक मास के उपलक्ष्य में 10-10-38। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज गाना थोड़ा बैठा हुआ है। हरे कृष्ण। तब थके तो नहीं। हरे कृष्ण। भक्त में हरे स्वामी। कल शाम में हमने कार्तिक महीने की महिमा का वर्णन किया था। आप ऐसे कितने भक्त यहाँ हो इस समय कल नहीं गए। लीला की भी चर्चा की, जैसे कल कहा था सब महीनों में कार्तिक का जो महीना है सबसे प्रभावशाली है भक्ति के लिए। और इस कार्तिक के महीने में थोड़ी भी भक्ति करोगे उसका 1000 गुना लाभ प्राप्त होगा। और कार्तिक के महीने में भक्तों का यह प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक शरणम कीर्तन में रुचि ली जाए और अधिक से अधिक प्रयास किया जाए माया के प्रभाव से बचने के लिए। और कार्तिक के महीने में हर कार्य किया जाता है किसकी खुशी के लिए, राधा रानी की खुशी के लिए। और आपको उदाहरण दिया था इस प्रकार कार्तिक के महीने में एक चूहा जो कि घी खाता था और घी खाते खाते वो जल गया और किस प्रकार भगवान ने उसे मानव दे दिया और फिर वो भगवान के धाम में आया। तो कार्तिक के महीने में अज्ञानता से भी अगर भक्ति की जाए उसका आपको बहुत अधिक लाभ होता है। हम सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। और कार्तिक के महीने का एक और नाम क्या है, लीला की चर्चा का हमने की थी। कल आपने दो बड़े सुंदर नाटक भी देखे थे जिसके द्वारा आपको लोगों की कथा सुनाई और सनातन गोस्वामी के विषय में। तो आज हम सीधा भगवत का एक श्लोक पढ़ेंगे। ये है भगवत में 10वें के 10वें अध्याय का 36 श्लोक। श्लोक लंबा श्लोक है तो आप साथ उच्चारण नहीं कर सकोगे। मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा अगर हम सीधा शब्द अर्थ करें। और कार्तिक के महीने हमें भगवान की लीलाओं के विषय में ज्ञान बढ़ाना चाहिए, रुचि बढ़ानी चाहिए। और कार्तिक के महीने में अगर आप भगवतन भी सुनोगे तो आपको वो लाभ मिलेगा जैसे कि आपने क्या किया है, सारे मेरे शास्त्रों का अध्ययन किया है। तो इस महीने हम सबको नियमित रूप से रोज भागवतम सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो ये श्लोक है 10वें से। वाणी ज्ञान कथन श्रवणों कथायाम
अब से हमारे सभी वाणी ही, सब लोग बोलिए वाणी ही, शब्द बोलने की शक्ति गुण अनुकथन सदैव आपकी लीलाओं के विषय में बातें करने में व्यस्त, श्रवण हो कान कथायाम आपकी तथा आपकी लीलाओं के विषय में बातें करने में, हस्तो हाथ पैर तथा अन्य इंद्रियां च भी कर्मसु आपका आदेश पालन करने में लगाकर, मन मन तव आपका, पादयो चरण कमलों का, नह हमारी स्मृत्यां ध्यान में लगी स्मृति में, शिर सिर तव आपका, निवास जगत प्रणामी चूंकि आप सर्वव्यापी हैं और सर्वस्य हैं तथा हमारे सिरों को होना चाहिए भोग के लिए नहीं, दृष्टि ही देखने की शक्ति, सतान वैष्णव के दर्शन में दर्शन करने में, अस्तु इसी तरह लगे रहे, भवत तनु नाम जो आपसे अभिन्न है। अनुवाद है अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें, हमारे हाथ पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगें तथा हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करें, हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें क्योंकि सारी वस्तुएं आपके ही विभिन्न रूप हैं और हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णवों के रूपों का दर्शन करें। अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें, हमारे हाथ पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगे तथा हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करें, हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें क्योंकि सारी वस्तुएं आपके ही विभिन्न रूप हैं और हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णवों के रूपों का दर्शन करें। तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा परम महा भागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। यहाँ पर भगवान को समझने की विधि दी गई है, यह विधि भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासी सख्यम आत्मनिवेदनम। हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेण ऋषिकेशनम सेवनम भक्ति रोचते नारद पंचरात्र। भगवान कृष्ण की सेवा में हर वस्तु को मन शरीर तथा सारी इंद्रियों को लगाना चाहिए। इसे नारद स्वयंभू तथा शंभू जैसे दक्ष भक्तों से सीखना होगा, यही विधि है। हम भगवान को समझने की अपनी विधि नहीं गढ़ सकते क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो भी कल्पना कर लें या मन से गढ़ लें उससे भगवान का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा विचार यत मत तत पथ मूर्खतापूर्ण होता है। कृष्ण कहते हैं भक्त्या अहमेत्या ग्राह्यः, केवल भक्ति के कार्यों द्वारा मुझे समझा जा सकता है। भागवत 11:14-21। यह अनुकूलेन कृष्णा अनुसृजनम अर्थात भगवान की सेवा में अनुकूल भाव से लगे रहना कहलाता है।
श्री गुरवे नमः। श्री देवताओं के 100 वर्षों के लिए हमारे पृथ्वी के
छह महीने देवताओं के 12 घंटे के बराबर होते हैं। तो देवताओं के 100 वर्षों के लिए तुम वृक्ष बन जाओ, और इसके साथ एक वर भी दिया। वर ये था कि देवताओं के 100 सालों के पश्चात उन्हें परम भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो ये वर अच्छा श्राप अच्छी थी या बुरी थी? अच्छी थी। देवताओं के 100 सालों के बाद इन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो मल कुबेर मणि भी बन गए पेड़ नंद महाराज के आंगन में। और आपने को दामोदर लीला में सुना किस प्रकार ये सुना माता की इच्छा थी कि मेरे बेटे को कुछ सबक सिखाया जाए। बहुत शरारती है कि बड़ी सुना माता के हृदय में सदा एक ही भाव था कृष्ण के सेवा। मक्खन भी दही भी मत रही थी इन भावना के साथ ये बड़ा अच्छा मक्खन बनाओ जिसके द्वारा मेरा बेटा पड़ोस के घरों में नहीं जाएगा चुनाने के लिए। और जब माता ने देखा कि बेटे ने मटकी तोड़ी है और मक्खन को खुले रूप से बांट रहे हैं बंदरों को, माँ पहले तो गई थी छड़ी के साथ, पर जब उन्होंने देखा कि मेरा बेटा घबरा गया है इस छड़ी को देखकर, इस छड़ी को तो फेंक दिया, प्रयास किया बेटे को बांधने के लिए। और बांधने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 जितनी रस्सियां थी सबको जोड़ लिया। और सबको जोड़ने के बाद ये अनुभव किया कि सब रस्सियां दो उंगली छोटी निकल गई होगी। माता समझ ही पाई भगवान की कैसी लीला है। बाकी जो गोपियां थी वो हंस रही थी ये देखकर कि यशोदा माता इतनी निकम्मी है, कभी छोटे बालक को बाहर भान भी नहीं सकती। पर जब भगवान ने देखा कि मेरी माता इतनी प्रयास कर रही है, पसीना आ रहा है, तो भगवान मान गए कि माता बांध सके। तो आप प्रयास करोगे भगवान को समझने के लिए, फिर भगवान गुरु की कृपा से उन्हें समझ पाओगे। और फिर यशोदा माता ने बांध दिया था बेटे को उत्सव के साथ दामोदर। दामो का अर्थ है रस्सी, उदर का अर्थ है बेली पेट। तो भगवान तो बंधे हुए थे जैसे आप दामोदर लीला में पढ़ते हो। असल में शास्त्र में भगवत में ये जो लीला है यम और अर्जुन की, इसे भी कई बार दामोदर लीला बुलाया जाता है। तो भगवान बंधे हुए थे इस उत्सव के साथ, इसे तो माता ने बांधा था। तो भगवान को याद था कि मेरे भक्त ने एक वचन दिया है। क्या था वो वचन? देवताओं के 100 वर्षों के पश्चात उनका दिव्य दर्शन उन्हें प्राप्त होगा। भगवान अपने भक्तों के इच्छाओं को वचन को उनका पालन करते हैं। आप भगवतों के साथ स्कंद में हिरण्यकशिपु की कथा पढ़ते हो। हिरण्यकशिपु वैसे तो हम उन्हें असुर के रूप से जानते हैं, हिरण्यकशिपु थे ऊंचे कोटि के भक्त। तो हिरण्यकशिपु की इच्छा थी कि कभी उन्हें मृत्यु के सामने नहीं झुकना पड़े। तो उन्होंने जब ब्रह्मा जी से निवेदन किया, ब्रह्मा जी ने कहा मैं ये वर तुम्हें कैसे दूं, मुझे भी मृत्यु के सामने झुकना पड़ेगा। 311 trillion 40 billion ये है ब्रह्मा जी की आयु। आप कैलकुलेट कर सकते हो 311 trillion 40 billion। तो हिरण्यकशिपु ने अनेक प्रकार के वर प्राप्त कर लिए। दिन में मृत्यु होगी, रात में होगी, शाम में होगी, आकाश में होगा, सागर नहीं होगा, पृथ्वी पर नहीं होगा, किसी पशु के द्वारा नहीं, पशु के द्वारा नहीं होगी, क्योंकि भाई की मृत्यु हुई थी, भगवान जो कि पशु के रूप में प्रकट हुए थे। तो नहीं तरह के वर प्राप्त कर लिए थे किसने, ज्ञानी कश्यपु ने। और जब फिर क्या सोचने लगे, अब तो चिंता की बात नहीं, अब हर प्रकार का वर प्राप्त हो गया है। और जब भगवान ने देखा कि ये ज्ञानी कश्यपु उनकी प्रिय भक्त प्रहलाद को इतना कष्ट पहुंचा रहा है, भगवान प्रकट हुए किस रूप में, नसीदेव भगवान के रूप में। ज्ञानी कश्यपु का सौभाग्य था भगवान की गोद में उनकी मृत्यु हुई, और ज्ञानी कश्यपु की मृत्यु के बाद भगवान ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा जी ने पितरों कहा, You made my job very difficult. Don't give me set of benedictions. भगवान ने ब्रह्मा को कहा, ऐसा वर भविष्य में मत देना, तुमने मेरा कार्य बड़ा कठिन बना दिया था, क्योंकि हर प्रकार का वर ज्ञानी कश्यपु ने प्राप्त कर लिया था। तो भगवान अपने भक्तों के इच्छा को पूरा करते हैं। नारद मुनि ने क्या वर दिया था, देवता के 100 वर्ष के पश्चात हुए के दो पुत्रों को भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। तो भगवान तो बंधे हुए थे दुखल के साथ, भगवान ने उस दुखल को घसीटा और घसीटा और दो पेड़ों के बीच में फंसा दिया, जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है कई बार मोटर आती है बीच में से। तो भगवान ने उखल को खींच कर ले गए दो पेड़ों के बीच में, और फिर जब खींचा उसे ये दो पेड़ गिरे, दो पेड़ों से निकले कुबेर के दो पुत्र, और उन्होंने फिर सबसे पहले तो भगवान को प्रणाम किया। उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि ये जो दर्शन प्राप्त हो रहा है, ये दर्शन प्राप्त हो रहा है किसकी कृपा से, नारद मुनि की कृपा से। तो नंदू कुबेर और मणिदेव ने नारद मुनि की प्रशंसा की। जब ये दो पेड़ गिरे तो बहुत भारी आवाज आई, बहुत भारी आवाज। यशोदा माता उस समय रसोई में थी, नंद महाराज किसी और कमरे में थे। तो जब उन्होंने ये भारी आवाज सुनी तो दोनों भागे भागे आए। उन्होंने पूछा, अरे ये दो अर्जुन के पेड़ कैसे गिरे, किसने आकर गिराया उन्हें? तो दूसरे हमारी मित्र थे वाले, उन्होंने कहा ये आपके बेटे ने गिराए। और माता कहने लगी, कैसे संभव है मेरा बेटा इतने बड़े पेड़ों को नीचे गिरा सकता है? जैसे हम कल समझा रहे थे, भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा उनके जो साथी हैं वो भी समझ नहीं पाते कि उनका असली स्वरूप क्या है। तो ईश्वर माता ने ये स्वीकार नहीं किया क्योंकि बेटे ने इन दो पेड़ों को गिराया है। नंद महाराज भी कहने लगे, शायद आंधी आई होगी तेजी से जिसके कारण ये दो पेड़ गिरे। और यशोदा माता ने और नंद महाराज ये स्वीकार नहीं कर पाए क्योंकि बेटे ने इन पेड़ों को गिराया है। पर कई ब्रजवासी ने जब इस घटना को देखा तो कहने लगे, हाँ गागा मुनि की भविष्यवाणी तो थी कि ये लड़का नारायण जैसे निकलेगा, तो शायद इस लड़के ने गिरा दिया हो इन दो पेड़ों को, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि ये नारायण जैसा निकल सकता है। और फिर नंद महाराज ने देखा कि यशोदा माता ने उखल के साथ इस बेटे को बांधा हुआ था, नंद महाराज ने क्या किया, खोल दिया और बेटे को मुक्त कर दिया। तो नाथ मुनि की कृपा से इन दो बेटों को परम भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। ये जो आज का श्लोक हमने पढ़ा है, इनका उच्चारण ये नल कुबेर और मणिकीर्त करने हैं, जो कुबेर के पुत्र थे और नारद मुनि की कृपा से उन्हें परम भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। तो आज के इस श्लोक में हम सबको नल कुबेर और मणिकीर्त बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं, खास करके कार्तिक के महीने में हमें इस संदेश का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं अब से, तो अब से का क्या अर्थ? अब से का अर्थ है कि हमने अज्ञान तक में आकर कई प्रकार के गलत काम किए, परम नारद मुनि जी की कृपा से हमें आपका दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है और अब से हम गलत काम नहीं करना चाहते। जैसे कि प्रभुपाद जी एक समय किसी को दीक्षा दे रहे थे जिसका पिछला इतिहास काफी भारी था, तो प्रभुपाद जी ने कहा अब नौ मोर से अब पाप करना बंद करो। तो यहाँ कहा जा रहा है आपसे, तो अज्ञानता में हम सब लगभग पशु का जीवन बिता रहे थे और बिताते थे, पर जब हम साधु की संगत में आते हैं तो हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। साधु संगत सर्वशास्त्र लाभ माता साधु संगत सर्वसुख है। कहा गया है चैतन्य चतुर्थ में एक पल के लिए भी अगर आपको शुद्ध साधु का संदेह की संगत मिले तो आपका उद्धार हो सकता है। तो साधुओं का यही भाव रहता है, जैसे आज से हजारों साल पूर्व नामेश्वरानिया में एक सभा चल रही थी जिसमें हजारों संत महात्मा उपस्थित थे और इन संत महात्माओं के पास खास योग्यता थी जिसके द्वारा वो देख सके कि कलयुग के क्या लक्षण होंगे और उनका क्या उनकी चिंता क्या थी, कलयुग में किस प्रकार लोगों का उद्धार होगा। मैंने आपको कल कहा था कि कार्तिक के महीने में ही श्री प्रभुपाद जी भी आए थे वृंदावन में पहली बार और दूसरी बार, और कार्तिक के महीने में ही भक्ति सिद्धांत जी ने प्रभुपाद जी को खास आदेश दिया था कि अगर भगवान तुम्हें धन दे तो इस धन से ग्रंथों को प्रकाशित करना, और प्रभुपाद जी ने इस आदेश को बड़ी गंभीरता से स्वीकार किया और इस दोनों और अपने शिष्य को ये आदेश दिया अगर तुम्हें खुश करना चाहते तो क्या करो, ग्रंथों का विसर्जन करो। इसीलिए प्रचार के कार्य पर बल दिया जाता है क्योंकि ये महात्मा की इच्छा है कि वंजीवों का उद्धार हो, और भक्तों का ये प्रयास रहता है कैसे उद्धार किया जाए। तो जो संत महात्मा है वो किसका सुख चाहते हैं, अपना या समाज का? समाज का। तो यहाँ नारद मणिदेव और मणिनंदकुबेर कह रहे हैं अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करेंगे। तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं और जी के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का वर्णन, और कानों से क्या करना चाहिए, आपकी महिमा का श्रवण करें। दामन लीला में आप देखते हो कि यशोदा माता जब दही मथ रही थी तो भगवान के बाल लीलाओं का उच्चारण कर रही थी कीर्तन के रूप में। तो हम सब का प्रयास रहना चाहिए कि हम सदा क्या करें, भगवान के नामों का उच्चारण करें। तो कह रही है यहाँ कहा जाना है शब्दों से भगवान लीलाओं का वर्णन करें और कानों से आपकी महिमा का श्रवण करे। इसको कहा जाता है श्रवणम और कीर्तनम। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह है भक्ति की विधि, और श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है, नवदा भक्ति की चर्चा करते हैं। और ये उपदेश हमें पहले किसने दिया था, किसने दिया था, प्रहलाद महाराज ने। शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचम मंगलम दर्शन सत्यम आत्म वेदनम। आप में से कितने भक्तों ने इस प्रसिद्ध श्लोक को कंठस्थ किया हुआ है? सबने नहीं। तो आप सबका एक ये निर्णय होना चाहिए कि आप इस श्लोक का तो कंठस्थ करो। ये श्लोक का उच्चारण किया था प्रहलाद महाराज ने। प्रहलाद महाराज के सुर पिता का प्रयास था कि किसी प्रकार से जो आकर्षण है मेरे बेटे का भगवान के प्रति वो समाप्त हो जाए। और प्रहलाद के दो अध्यापक थे संदा मणका। तो संदा मणका ने ज्ञानिकांत को कुछ सूचना दी, अब हमने आपके बेटे का दिमाग बिल्कुल बदल दिया है, अब परीक्षा लीजिए, वो केवल आपको सर्वश्रेष्ठ मानेगा, विष्णु को नहीं। तो पिता ने बेटे को गोद में बिठाया और पूछा, बताओ आज पाठशाला में क्या सीखा, जो सीखा है कोई सबसे महत्वपूर्ण क्या है? और पिता ने सोचा था कि बेटा कहेगा आप हो सर्वश्रेष्ठ, तो बेटे ने क्या कहा, ये नवदा भक्ति का ज्ञान है। तो आध्यात्मिक जीवन निर्भर है किसके ऊपर, श्रवणम और कीर्तनम के ऊपर। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा भक्ति का बीज उगेगा जब आप इस बीज को क्या पिलाओगे, पानी पिलाओगे। इसका अर्थ क्या था, श्रवणम और कीर्तनम के माध्यम से। तो हम सब भक्तों के लिए श्रवणम कीर्तनम सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, और श्रवणम कीर्तनम करोगे तो बाकी अनर्थ का को दूर कर सकोगे। जैसे रूप गोस्वामी जी कहते हैं अधो श्रद्धा तथा साधो। अगर सबसे पहले हमारे हृदय में ये श्रद्धा होनी चाहिए कि हम आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करना चाहते हैं, और ये श्रद्धा होगी भगवान हमें किसी साधु की संगत में ले जाएंगे। साधु की संगत अब दो माध्यमों से प्राप्त कर सकते हो, एक है भक्त साधु, दूसरा है ग्रंथ साधु। जैसे कई लोग जुड़ते हैं कृष्ण भक्ति में क्योंकि किसी ने उन्हें ग्रंथ को चाह कर दिया है, और कई जुड़ते हैं क्योंकि किसी भक्त साधु ने उन्हें मंत्र दी प्रसन्न कर दिया। तो रूप गोस्वामी कहते हैं साधु की संगत में आकर आपको भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है, और जब आप इनका पालन करते हो जैसे भजन क्रिया कहा जाता है, जब अनर्थ निवृत्ति प्राप्त होती है। अनर्थ का अर्थ है वो जो आध्यात्मिक जीवन के शत्रु में अनर्थ था, जिनकी आवश्यकता नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, और इनको अगर आप दूर करना चाहते हो तो यही है एक साधन श्रवणम और कीर्तनम। जीव जो है इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, अगर हम जीव का उपयोग करें भगवान का गुणगान करने के लिए और कृष्ण प्रसाद स्वीकार करने के लिए तो ये है जीव का सदुपयोग। अगर हम इस जीव का उपयोग करें प्रजापा के लिए, भौतिक चर्चा के लिए, और बिना भोग लगाए हुए भोजन खाने के लिए, तो यही जीव आपकी शत्रु बन जाती है। बाकी सनातन जी ने कहा है टंग बेली जेनिटल्स सब स्ट्रेट लाइन में है। अगर किसी प्रकार के जीव को वश में रखोगे तो दूसरी इंद्रियों को भी वश में रख सकोगे। तो यहाँ हमें उपदेश दिया जा रहा है कि जीव द्वारा भगवान की लीलाओं का वर्णन करें। अगर आप कृष्ण कथा की चर्चा नहीं कर रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जल पकड़ना पड़ेगा। और रूप गोस्वामी जी हमें कहते हैं श्री उपदेश में त्याहा प्रयशस्य प्रजल्पा यमाग्रह, कि प्रजल्पा के द्वारा भक्ति जो है नष्ट हो जाती है। भक्तिवादी व्यक्ति कई बार पूछते हैं आप लोग रोज यही मंत्र का उच्चारण करते हो आप कह सकते नहीं, तो उत्तर है नहीं सकते। और नारद मुनि जी 14 स्कंध में एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि रोज आप फ्रेश एयर ताजी हवा का अनुभव करते हो तो आपको ये लगता है कि कल की तो आज नहीं करना चाहिए, उसका ताजापन आपको रोज महसूस होता है। तो इसी प्रकार हरि नाम में हमें रुचि बढ़ानी चाहिए और कार्तिक के महीने में हम सबका यही प्रयास रहना चाहिए कि हरि नाम में हमारी रुचि बढ़े। कली काले नाम रूप कृष्ण होता है, इस कलयुग में भगवान प्रकट होते हैं किस माध्यम से, अपने दिव्य नामों के द्वारा। तो यहाँ उपदेश दिया जा रहा है कि लीलाओं का वर्णन करें, उनकी महिमा का श्रवण करें। और भगवान की लीलाएं अनेक हैं, हमारे समक्ष चैतन्य लीला है, कृष्णा लीला है, प्रभुपाद जी की लीला है, इन चीजों में हमें रुचि बढ़ानी चाहिए। और अगर हम शरण और कीर्तन में रुचि बढ़ाएंगे तो खुद ही खुद प्रजापा में रुचि घटेगी, खुद ही खुद भौतिक कार्य से हम अपने आप को बचा सकेंगे। तो शरण कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सब भक्त के लिए, चाहे आप पुराने भक्त हो या नए भक्त हो। हरिदास ठाकुर ने 300,000 बार जाप करते थे। एक समय वहाँ के काजी उस समय बंगाल में मुसलमानों का राज्य था, तो मुसलमान राजा थोड़ा प्रभावित था हरिदास ठाकुर से। उसे जो काजी था धार्मिक नेता स्पिरिचुअल है, उसके मन में बड़ा क्रोध था हरिदास के विषय में। तो उसने कई बार नवाब से शिकायत की, ये हरिदास को आप नहीं रोकोगे तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। हरिदास ने कई बार उसे ये संदेश दिया गया हरि नाम को रोकने के लिए, बंद करने के लिए नहीं रोका, करते गए। और फिर उन्हें 22 बाजारों से घसीट कर ले गए। जब उन्हें पीटा जा रहा था तो ये कहा जा रहा था हरि नाम बंद करो, हरिदास जी हरि नाम को उच्चारण बंद नहीं। हमें याद है जब हमारी संस्था रशिया में पहली बार गई थी तो जब प्रचार फैलने लगा उन दिनों में रशिया का नाम था सोवियत यूनियन, उन दिनों में कम्युनिस्ट राज्य था और भक्तों ने हरि नाम करना शुरू कर दिया था और कृष्ण भक्ति का प्रचार फैलना शुरू हो गया था। आज तो पापा जी की कृपा से उन देशों में 150 से अधिक भक्त हैं, 150 से अधिक मंडल हैं, तो लाखों भक्त हैं। तो जब ये प्रचार शुरू हुआ तो सरकार इसका बहुत विरोध कर रही थी, हमारे जितने भक्त थे जितनों को कई लोग सब छोड़कर प्रचार कर रहे थे, छोड़कर किताबों को बांट रहे छाप रहे थे। एक आर्मेनिया में अंडरग्राउंड प्रिंटिंग प्रेस थी, मैं उधर गया था बिल्कुल अनभिप्राय कि कोई ढूंढ ही नहीं सके कहाँ है वो प्रेस। और अंडरग्राउंड प्रिंटिंग प्रेस में भक्त हंसते हंसते लेटर प्रेस की भगवद्गीता छाप रहे थे और फिर उसी कॉपी बनाकर भक्तों को बांट रहे थे। तो कई भक्त पकड़े गए थे, ये रक्षा की जल्द जल्द काफी तेज है। कई भक्त जेल में गए, कई बच गए तो कई जेल में गए। रोज उन्हें जेल में देवा गया और कईयों को सरकार ने साइबेरिया में भेजा। साइबेरिया नाम सुना है आपने? सुना है नहीं? रशिया का सबसे ठंडा इलाका है। आपकी दिल्ली में जो ठंड होती है उसे 50 गुना ज्यादा ठंड होती है। तो कईयों को जेलों में भेजा साइबेरिया में और लगभग सबको इस साइबेरिया भेजा था। और खाने के लिए सूखी डब रोटी मिलती थी। एक भक्त ने सूखी डब रोटी को लेकर जाप माला बना दिया और कईयों को उन्हें यह कहा जाता था, भाई ना भल करो तो हमें पनीर खाओ तो तुम्हें छोड़ देंगे। और आप विश्वास नहीं करोगे, किसी ने लगभग ये मां स्वीकार नहीं किया और कई तो जेल में मुंह के गए थे। तो ये कहा जा रहा है श्रवणम और कीर्तनम। तो हरिदास को 22 बजावनों से घसीट कर ले जा रहे थे जब भी उन्होंने हरिनाम बंद नहीं किया। तो मणिदीप और नलकुबेर का आदेश क्या है? दीप द्वारा श्रवणम कीर्तनम करना है। और जितने ध्यान से आप करोगे उतनी तेजी के साथ हृदय जो है ज्यादा शुद्ध बनेगा। कई बार भक्त पूछते हैं ये जो 26 गुण हैं, अनेक गुण हैं, ये कैसे प्राप्त होंगे? जो हमारे अनर्थ हैं इनको दूर कैसे करें? सबके लिए एक ही उपाय है, एक ही दवाई है हर चीज के लिए। वो क्या है? ये हरिनाम। तो जीव द्वारा भगवान का गुणगान करो, कानों द्वारा क्या करो? गुणगान को सुनो। अगर कोई प्रजल्पा करने आता है तो उसे कहो कि यह भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए कहा कि भगवान के शरणागत होने के 6 लक्षण हैं, जिनमें सबसे पहला है कि जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करना चाहिए, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे त्याग दो। तो श्रवणम कीर्तनम भक्ति के लिए क्या है? अनुकूल प्रतिकूल और प्रजल्प। हाँ, अगर आपको पता लगे कि भोजन में थोड़ी सी झेल है तो आप खाओगे नहीं खाओगे? तो आगे क्या कहा जा रहा है? कान, हमारे हाथ पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्य में लगे। तो भक्ति ये इच्छा रहती है कि हमारे शरीर की इंद्रियों का उपयोग किया जाए, किस लिए? भगवान की सेवा में। और इस विषय में संतों के द्वारा अमरीश महाराज का उदाहरण दिया जाता है। अमरीश महाराज राजा थे, राजा होते हुए साथ में भगवान के ऊंचे कोटि के भक्त भी थे। आप भागवत में पढ़ते हो अनेक प्रसिद्ध भक्त राजा भी थे। तो अमरीश महाराज ने उदाहरण दिया और उसका ही संक्षेप में इस श्लोक में भी वर्णन किया जा रहा है। अमरीश महाराज ने अपने पैरों का उपयोग किया, किस लिए? भगवान के मंदिर के कार्य के लिए। अपने हाथों का उपयोग किया, किस लिए? भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए। अपने सिर का उपयोग किया, किस लिए? भगवान के सामने प्रणाम करने के लिए। अपने जीव का उपयोग किया, किस लिए? भगवान का गुणगान करने के लिए। तो यहाँ कहा जा रहा है हमारे हाथ पांव तथा अन्य इंद्रियां इनका हमें उपयोग करना चाहिए, किस लिए? भगवान की सेवा में। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं ऋषि की न सेवना बाकी कहते हैं। भगवान के अनेक नामों में एक नाम है ऋषि के। तो इन इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान है। तो हमारा हम सब का ये प्रयास रहना चाहिए कि इंद्रियों का उपयोग किया जाए, किस लिए? भगवान की सेवा में। चैतन्य महाप्रभु जी गुड़ी का मंदिर कमांड की सफाई कर रहे थे 200 भक्तों के साथ, और जिसे कहा जाता है गुड़ी का मंदिर। तो चैतन्य महाप्रभु और उनके साथ ही गुड़ी का मंदिर को पूरा साफ कर रहे थे, छत में, दीवारों में, फर्श में, और पानी लाया जा रहा था, पानी कई रगड़ रहे थे, कई पानी फेंक रहे थे, सब पैरों हाथों से काम कर रहे थे, जी से क्या कर रहे थे? भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे। तो हमें भी पैरों का, हाथों का, सबका उपयोग करना चाहिए, किस लिए? भगवान की सेवा में। हमारा मन सदा आपके चरण कमलों का चिंतन करे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा मन क्या करे? भगवान के चरण कमलों का चिंतन करे। मन को हमें बंधु बनाना है। इस समय मन हमारा शत्रु है। भगवद गीता के 6 अध्याय का विषय है ध्यानी लोग, जिसमें भगवान कहते हैं जिसने मन पर वश कर लिया वो व्यक्ति हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा, जिसने मन पर वश नहीं किया वो हर स्थिति में अशांत रहेगा। तो मन को वश में लाना, इसलिए आप शास्त्र में पढ़ोगे कि अनेक श्लोकों में इस विषय पर बल दिया जा रहा है। भगवान गीता की समाप्ति में क्या कहते हैं? मन भाव मत भक्तो मध्य मन नमस्तो, मन पर मेरा चिंतन करो। यहाँ कहा जा रहा है मणिदीप कुबेर के द्वारा कि मन के द्वारा सदा आपका चिंतन करे, आपके चरण कमलों का चिंतन। तो इस विषय में संतों ने हमें ये उपदेश दिया है, भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। जैसे आप दुनिया आए हो, कृष्ण बालराम का दर्शन प्राप्त कर रहे हो, भगवान के विग्रह, भगवान अपने आप को आर्चर विग्रह के रूप में प्रकट करते हो करते हैं, और आज इंटरनेट की कृपा से आज मूर्तियों का दर्शन भी प्राप्त कर सकते हो, भगवान के विग्रह का दर्शन करो, मन द्वारा भगवान की लीला का स्मरण करो, मन द्वारा भगवान के उपदेश स्मरण करो। जैसे भगवतम के प्रथम स्कंध में पढ़ते हो, जब भगवान प्रकट हो गए थे तो उनके सनातन साथी अर्जुन अत्यंत दुखी थे। अर्जुन ने उन घटना का स्मरण आरंभ किया क्योंकि बहुत ही दृष्टि से असंभव थी, और उनके घनिष्ठ मित्र किसियों के कारण वो सफल हुए। और इसके पश्चात अर्जुन ने भगवान के गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया, और जब गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया तो उन्हें ऐसे लगा जैसे कि भगवान स्वयं वहां उपस्थित हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं तात्पर्य में, जैसे अर्जुन ने गीता के श्लोकों का स्मरण किया, उसी प्रकार हम सबको सदा गीता के श्लोकों का क्या करना चाहिए? मनन करना चाहिए। इसलिए सदा माथा मथन करते हुए भगवान की बाल लीला का स्मरण करनी थी। तो हमें भी इसी प्रकार प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के दिव्य आदेश का स्मरण करें। कभी कभी बहुत सुनने में आता है ये तो बड़ा कठिन है, बड़ी डिफिकल्ट कठिन है, पर असंभव नहीं। अगर हमारा श्रवण कीर्तन ठीक रहेगा तो विष्णु स्मरण भी हो पाएगा, और अगर श्रवण कीर्तन कमजोर रहेगा तो विष्णु स्मरण भी बड़ा कठिन रहेगा। तो मन को बंधु बनाना है, और जिस व्यक्ति ने मन को बंधु बना लिया वो व्यक्ति हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा। तो आप सब यहाँ आए हो, हमारा ये निर्णय होना चाहिए कि अपने मन को भी क्या करना है, बंधु बनाना है। तो भगवान के आदेश का स्मरण करो, फिर भगवान की इच्छा का, जैसे प्रहलाद महाराज कहते थे, हे भगवान मुझे अपनी मुक्ति की चिंता नहीं, मुझे उनकी चिंता है जो कि दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनके मन में ये भावना सदा किस प्रकार वन्यजीवों का उद्धार हो सके। तो जब कहा जाता है मन के द्वारा भगवान के चरण कमलों का चिंतन, तो उसका अर्थ है मन के द्वारा आध्यात्मिक विषय का चिंतन करो और भौतिक नहीं। हमारा सिर इस संसार के हर वस्तु को नमस्कार करे, क्योंकि सारी वस्तुएं आपकी विभिन्न रूप हैं, और हमारी आंखें आपके अभिन्न वैष्णव के रूपों का दर्शन करें। तो वैष्णव का दर्शन करते हैं साधु संगत में रहे, वैष्णव का यही खैर, वैष्णव का दर्शन लेने से भी कृष्ण भगवान याद आते हैं। आप लोग सड़क में चलते हो तिलक के साथ, दीप बैग के साथ, तो लोग देखकर आपको कहते हैं हरे कृष्णा। तो वैष्णव को देखकर ही लोगों को याद आ जाता है ये कौन है, ये कृष्ण है। तो शास्त्र में साधु संगत पर भी बहुत बल दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, तो वहाँ रामानंद रॉय से मिले। रामानंद रॉय दक्षिण भारत के राजपाल थे, और उस समय हिंदुस्तान में महाराज पूरा का राज्य था। रामानंद रॉय ऊंचे कोटि के भक्त भी थे, और यात्रा आरंभ करने से पहले सर्वोभाचार्य ने सूचना दे दी थी कि वहाँ आपका दर्शन प्राप्त, आप रामानंद रॉय का दर्शन प्राप्त होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद रॉय से अनेक प्रश्न पूछे, जिनमें एक प्रश्न ये था कि संसार में कष्ट की किस प्रकार का कष्ट सबसे गहरा कष्ट है। और रामानंद रॉय ने कहा भक्तों की संगत से दूर हो जाना ये सबसे भारी कष्ट है। तो दूसरे शब्दों में जब हम भक्तों की संगत से दूर हो जाते हैं तो हमारी भक्ति भी कमजोर हो जाती है। जब हम भक्तों की संगत में रहते हैं तो हमारी भक्ति का भी नुकसान रहता है। तो इसलिए आप शास्त्र में पढ़ोगे कि बार बार इस विषय पर बोल दिया जाता है, किस विषय, साधु संगत। प्रभुपाद जी की कृपा से प्रयास से आज अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संगे किए गए हैं। लगभग हर हर प्रसिद्ध शहर में और केंद्र नहीं भी है आपको भक्त मिलेंगे लगभग हर शहर में। इन तो इन भक्तों का संग साधु संगत का नाम उठाओ, और साधु संगत में रहोगे तो भक्ति ज्यादा सरल बनेगी, और भक्तों की संगत में उतने लाभ जितने की आवश्यक है। जैसे आप सब नौकरी करते हो, धंधा करते हो, तो भक्तों की संगत में रहना पड़ता है, तो उतने ही रहो जितने की आवश्यक है। तो साधु संगत का लाभ उठाओ। तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को कहा कि हम तीन प्रकार की संगत प्राप्त कर सकते हैं। एक है उनकी संगत जो भक्ति में आपसे ज़्यादा एडवांस है, दूसरे जो आपके बराबर हैं, तीसरे जिनके पास आपसे कम ज्ञान है। जब आपको सौभाग्य हो कि आप उनकी संगत में आओ, जो आपसे ज्यादा आगे हैं भक्ति में, हमें खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जिसके उपयोग से आप जीवन को सफल बना सकोगे। और जब आप अपने समानता के भक्त से मिलते हो तो उससे मित्रता रखो। और मित्रता का भाव क्या है? मित्रता का क्या अर्थ? मित्रता का अर्थ है हम एक दूसरे को सहयोग देते हैं भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। एक साथ प्रसाद खाते हैं, एक साथ प्रचार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी जब अपने भक्तों को भेजा प्रचार के लिए तो उन्होंने भी झोड़ी बनाई थी हरिदास नित्यानंदा की, घर घर जाकर प्रचार करने के लिए। तो यह आदेश दिया था, बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, सबसे ये निवेदन करो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की भजन उपासना करो और कृष्ण की शिक्षा को। तो ये होना चाहिए हम सबका भाव कि हम मित्रता, एक दूसरे से मित्रता का भाव बढ़ाएं और एक साथ एक दूसरे का सहयोग करें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और तीसरी संगत क्या है? उनकी संगत जो कि भक्ति में आपसे पीछे है, जब आप उनसे मिलते हो जिनका भक्ति में आपसे कम ज्ञान है, कम रुचि है, तो किस प्रकार की भावना होनी चाहिए हमारे में? किस प्रकार की भावना? दया की भावना। दया की भावना का अर्थ है कि हम प्रयास करते हैं उन्हें दिव्य ज्ञान पहुंचाने के लिए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हमें भक्तों की संगत में रहना चाहिए। ये भाव बार बार प्रस्तुत किया जा रहा है, भक्तों की संगत का, मन को वश बनाने का, हरि नाम की महिमा। तो कभी कभी लोग पूछते हैं क्या कारण है कि बार बार इन विषयों पर बल दिया गया है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि हम हर चीज को बड़ी सरलता से भूल जाते हैं। तो बार बार हमें याद दिलाया जाता है क्या कि नियमों का पालन करने के लिए। तो इस श्लोक में जो हमें संदेश दिया जा रहा है इसका हमें लाभ उठाना है और ये ज्ञान हमें प्रमाणित गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त होता है। तात्पर्य द्रौपदी जी, नारद मुनि, स्वयंभु और शंभु की चर्चा करते हैं। भगवत कहा गया है स्वयंभु निराद शंभु ब्रह्मण कपिल मनु कि बारह महाजन हैं। तो हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं इन महाजनों के प्रतिनिधियों के द्वारा। ये नहीं कि केवल अगर भगवान उपस्थित होंगे तो हम उनकी शिक्षा का लाभ उठाएंगे, नहीं। अगर भगवान का प्रतिनिधि, गुरु परंपरा का प्रतिनिधि आपको वही संदेश दे रहा है जो कि शास्त्र में है, हमें इसका पूरा लाभ उठाना है। तो मणिदीप और अनुकुबेर द्वारा जो शिक्षा मिलती है उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। और संक्षेप में यह है कि हम आध्यात्मिक कार्य में जुड़े, श्रवण कीर्तन का लाभ उठाएं। और श्रवण कीर्तन जो है असली टॉनिक है। एक समय प्रभुपाद जी के गुरु भाई प्रभुपाद जी को मिलने आए इलाहाबाद में। उस समय प्रभुपाद जी की एक फार्मेसी थी जिसका नाम था प्रयाग फार्मेसी। तो उस गुरु भाई ने पूछा, प्रभुपाद जी ने विटामिन टॉनिक दिया। तो गुरु भाई ने कहा कि अभी बाबू मुझे टॉनिक दो जिसके द्वारा भक्ति बढ़े। ये बस फॉर्मूला है तो अभी तक दवाई तैयार नहीं हुई है। ये थी उनकी विनम्रता। क्या था फॉर्मूला? तो हरि नाम का लाभ है तो अगर हम विनम्रता के साथ हरि नाम को उच्चारण करें, सबको आदर दें बिना किसी प्रकार के आदर की उम्मीद के, फिर हरि नाम का हमें पूरा लाभ पहुंचेगा। तो ये श्लोक हमें आज के रात में इसलिए चुना क्योंकि इस श्लोक में हमें वही उपदेश दिया जा रहा है जिस उपदेश का हमें लाभ उठाना चाहिए भगवान के शरणगत होने का। तो कार्तिक के महीने में हम सबका प्रयास रहना चाहिए, हम क्या बढ़ाएं कार्तिक व्रत क्या होना चाहिए कि हम शरणम और कीर्तनम बहुत बढ़ाएं और गहराई के साथ भगवान के शरणगत हो जाए। जो कार्य भक्ति के लिए अनुकूल है उसे आप स्वीकार करो और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे क्या करो त्यागो। इस विषय में रूप गोस्वामी कहते हैं, हे मेरे प्रिय मित्र, भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, पर भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करो। तो आप सब भक्ति में जुड़े हो क्योंकि आप सब की श्रद्धा है भक्ति की महिमा में, और भक्ति का पालन होगा भक्तों की संगत में सरलता के साथ। और भक्ति आरंभ बढ़ती है कैसे, शरणम कीर्तनम के उच्चारण से। और हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम ध्यान पूर्वक शरणम कीर्तनम को उच्चारण करें। जितने ध्यान से करोगे सावधानी के साथ उतना अधिक लाभ आएगा। हरि नाम का लाभ तो हर स्थिति में है, पर हरि नाम का अगर आपने पूरा लाभ उठाना चाहिए तो हमें बड़े ध्यान से उठना चाहिए। हम सबसे निवेदन है आप इस श्लोक का लाभ उठाइए और खास करके इस दामोदर के महीने में आप लोग माला का जाप भी बढ़ा सकते हो, प्रयास करोगे रोज ग्रंथों को पढ़ें। जब चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो एक ब्राह्मण ने कहा उन्हें, रियासत ब्राह्मण था जिनका नाम था प्रमा, उन्होंने ये कहा कि मैं घर में नहीं रहना चाहता, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ यात्रा में। महाप्रभु ने कहा मेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं, जाओ वहीं रहो, कई नियमों का पालन करो, अगर तुम इन नियमों का पालन करोगे तो तुम सदा मेरे साथ रहोगे, कभी भी मेरे से जुदा नहीं रहोगे। क्या थे नियम, क्या थे नियम? पहला नियम क्या था, चैंट हरे कृष्ण। पहला नियम था हरे कृष्ण को उच्चारण करो। सब कर रहे हो हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण, 16 मार्ग जाप सब कर रहे हो। दूसरा आदेश क्या था, क्या था दूसरा देश, भागवतम पढ़ो और श्रीमद् भागवत गीता पढ़ो। तो हम सब का प्रयास रहना चाहिए कि हम भागवतम पढ़ें और गीता पढ़ें। एक श्लोक पढ़ो तो पढ़ो जरूर, भागवतम में है भगवान की वाणी, गीता है में है भगवान की वाणी, और इन वाणी में भगवान में कोई अंतर नहीं। इस प्रकार हरि नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं, गीता और भागवत के संदेश में भगवान में कोई अंतर नहीं। तीसरा आदेश था साधु संगत। चौथा भगवान के आचार्य विग्रह की उपासना। भगवान आचार्य विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। कल हमने आपको कहा था कि कार्तिक के महीने में रूप गोस्वामी जी ने 8 इंच की एक विग्रह, 8 इंच का विग्रह बनाया था कृष्ण भगवान का, जो उन्होंने दिया था किसे, योग स्वामी को। भगवान अपने आप को 8 विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, प्रकट करते हैं। तो पांचवा आदेश क्या था, धामवासी बनो। तो धामवासी बनने का अर्थ क्या है, धाम में रहे हैं हमेशा, धाम में रहोगे तो कठिन होगा, नौकरी धंधा सब छोड़ना पड़ेगा। तो जहां हो वहीं रहो, पर भक्ति की शिक्षा का पालन करो। जहाँ भी राधा कृष्ण की स्थापना है वो शहर वो स्थान वृंदावन बन जाता है। कृपा से सारे विश्व के हर कोने में मदन है। ये है ये इंसानों का असली पता क्या है, वृंदावन धाम। इंसान में जाओ, भक्तों की संगत में रहो, इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाओ। तो आप सब कार्तिक के महीने शुभ समय इधर आए हो, कार्तिक का लाभ उठाओ। कार्तिक में भक्ति बड़ी आसान हो जाती है, एक रूप से भक्ति आसान हो गई है। सतयुग में भगवत प्राप्ति का साधन था भगवान का चिंतन करना, इस कलयुग में कोई लाभ आपको प्राप्त हो सकता है हरि नाम के उच्चारण के द्वारा। तो कार्तिक में और ज्यादा छूट मिल जाती है, थोड़ी भी भक्ति करोगे हजारों गुना उसका लाभ मिलेगा। तो आप सब इस महीने ये दृढ़ होकर प्रयास करो कि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, माया से दूर जाना है। ये संभव है अगर प्रयास करोगे। भगवान उनकी मदद करते हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं। यशोदा माता प्रयास कर रही थी बेटे को बांधने के लिए, परंतु में भगवान की कृपा से बांध पाए। उसी प्रकार का हमारा प्रयास रहेगा, भगवान हमें शक्ति देंगे जिसके द्वारा भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकते। हरे कृष्ण।